ओम शांति। मेरा विषय है स्नेह का विमान। तो अभी बाबा मिलन पर जो मुरली हुई उसकी शुरुआत ही थी कि आज सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह का सागर मिलन मनाने आया है। बाबा बच्चों के स्नेह के वश में मिलन मनाने आया है। बाबा बच्चों के स्नेह के कमाल देखकर हर्षित होता है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को सकीलदे बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे बार बार बोलते रहते हैं। तो ये भी बाप का हमारे लिए स्नेह ही तो है। तो स्नेह का मतलब क्या है? जैसे ही हम स्नेह शब्द बोलते हैं एकदम से मन में आता है प्रेम, प्यार, स्नेह, सब एक ही बात है, लेकिन दोनों में अंतर है। प्रेम और प्यार है तो वहां पे मोह भी आ सकता है, अपवित्रता भी आ सकती है, लेकिन स्नेह प्योर लव लगता है। स्नेह में पवित्रता है, स्नेह में माफी है, स्नेह में सहन शक्ति है, स्नेह में सुख है। तो दोनों में फर्क है, स्नेह करना और स्नेह में समा जाना, दोनों में फर्क है। स्नेह करना जैसे हम अपने माता पिता, भाई बहन सबको स्नेह करते हैं, स्नेह करते हैं इसलिए हम साथ रहते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, उनको सहायता करते हैं, तो वो भी स्नेह है। लेकिन समा जाना यानी वो और मैं एक हो गए। तो जैसे बाप समान बनना स्नेह में समा जाना है। तो पहले स्नेह हुआ बाप से, फिर उसमें हम समा गए, तो समानता हो गई, तो स्नेह में समा गए। तो बाबा से स्नेह है यानी बाबा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, बाबा का कोई विकल्प ही नहीं है इस दुनिया में, वैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है, तो केवल बाबा ही सब कुछ है। तो बाबा है, सिर्फ बाबा की मौजूदगी है तो भी खुशी है, और वो खुशी है तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यानी कि जो पाना था वो पा लिया। तो जब इतनी गहराई हो हमारे प्यार में, बाबा के स्नेह में इतनी ज्यादा प्रगाढ़ता हो, तो उस गहराई के बाद में जो उसको याद करने में मजा आता है, और जो उस पराकाष्ठा पे पहुंचने के बाद में उस बाबा की मधुरता को बार बार स्वाद चखने की इच्छा होती है जागृत, वो ही मेरे ख्याल से स्नेह है। तो अगर ऐसे स्नेह का विमान चलाया जाए तो ये जो सारे विमान है, साइंस के विमान जैसे बाबा मुरली में बताते हैं, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो चांद तक पहुंचते हैं, हम तो परम धाम तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे स्नेह के वाहन की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, इस स्नेह के विमान की स्पीड के साथ साथ ऊंचाई भी बहुत होती है, बहुत पावरफुल होता है। तो हमें एक्चुअली अपने इस वाहन को चेक करना है कि हमारा स्नेह का वाहन कैसा है। और सीधी सीधी चेकिंग है, अगर स्नेह का वाहन हमारा अच्छा है तो हमारा योग फटाफट लगता है। जैसे बाबा सदा कहते हैं, हमारा सदा नहीं लगता, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो हमारे विमान की प्रॉब्लम है, सर्विसिंग की जरूरत है। तो अगर विमान अच्छा है स्नेह का तो योग भी सहज लग जाएगा, विमान अच्छा है तो माया भी हमको अटैक नहीं करेगी। तो बस स्नेह के विमान को उड़ाना है, और उसके लिए हमको कैसी सर्विसिंग करना है वो अपना अपना चेकिंग हमें ही करना है। तो स्नेह के विमान हमको मिला है, हम बहुत खुश नसीब हैं, बाबा ने हमें चूज किया है, तो मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि हमको कम से कम इस विमान का नॉलेज तो मिला कि हम इस पे कुछ वर्क कर सकते हैं। तो आप सब भी अपने विमानों की चेकिंग करिए, सर्विसिंग करिए, पेट्रोल डालिए और खूब आनंद लीजिए। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा टॉपिक है दुआओं की सीढ़ी। मैंने कभी बोला नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा सिमलिंग हो रहा है। दुआओं के लिए कहते हैं कि दुआएं हमें सबसे ज्यादा माता पिता से मिलती है, इसलिए उसके लिए गायन भी गाया गया है कि ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तो गठरी उतरेगी माना हमने कोई पाप किया है तभी गठरी उतारने की जरूरत है। दुआओं के लिए दो तीन परिभाषाएं भी दी गई है। कहते हैं कि जब हम दुआएं करते हैं तो ऊपर से हमारे रब हमें नियमतें देते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हमारा दिल शानदार आनंद से चमकने लगता है जिससे हमारी आत्मा के चारों ओर उजाला फैल जाता है। बट दुआ मांगना और दुआ देने में समस्या ये होती है कि जब हम लास्ट स्टेज में जाते हैं तो दुआ मांगने परमात्मा से जाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हमें दूसरी हेल्प मतलब कि जो हेल्प मिलनी चाहिए वो अदर जगह से ना मिलके परमात्मा से ही मिलेगी। हमें दुआएं क्यों चाहिए होती है, किस लिए चाहिए होती है और हमें दुआएं कहाँ से प्राप्त होगी, सोर्स ऑफ दुआ कहाँ से मिलेगा? तो सोर्स ऑफ दुआ जो मिलेगा हमें वो हमें मनसा वाचा और कर्मणा से मिलेगा। जब हमारा मनसा शक्ति स्ट्रांग होगी और हम दूसरों को मन से सकास देंगे तो हमें दुआ मिलेगी। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और दूसरों के हेल्पिंग नेचर या जो अभी भाई ने बोला कोऑपरेटिव नेचर होगा हमारा तो भी हमें दुआ मिलेगी। दुआ हम देंगे भी और दुआ हम लेंगे भी क्योंकि एक ही सोर्स नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। अगर हमने दुआ दी है किसी को तो वो पलट के हमें दुआ ही देगा। वाचा में हम बोलते रहते हैं लेकिन बाबा ने बोला है सोच के बोलना है। अगर हम सोच के बोलेंगे तो भी हमारी क्या होगी, दुआओं का अकाउंट बैलेंस ज्यादा होगा। तो अकाउंट को जैसे हम लोग स्थूल अकाउंट हम लोग चेक करते हैं, जिसके अकाउंट में पैसे ज्यादा होते हैं तो बार बार चेक करता है मतलब बैलेंस शीट, तो वैसे ही हमारे दुआओं के बैलेंस शीट को भी चेक करना है क्योंकि हम 10 तो पुण्य जमा करते हैं और 15 जो है 20 हमारे पाप भी जमा हो जाते हैं तो वो बैलेंस जो है क्या होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो हमें उसको माइनस नहीं करना, इंक्रीज करना है। इसलिए उसको हर बार दिन भर में मतलब 12 आवर्स में उसको हर घंटे चेक करना है कि हमारा बैलेंस कितना है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। फिर दुआएं हमें कहां से मिलेगी, जब हम बाप दादा की श्रीमत पर चलेंगे तब हमें दुआएं मिलेगी। और बाप दादा की श्रीमत पर चलने से हमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बद्दुआ दे क्योंकि बाप दादा ने जो हमें श्रीमत दे रहे हैं और उसका हम पूरा पूरा फॉलो करेंगे तो हम दुआ के पात्र बन जाएंगे। श्रीमत में बताया गया है कि बाबा का पहला श्रीमत है कि पहले स्वयं से स्वयं को संतुष्ट करो, पहले हम खुद को ब्लेसिंग दें तब हम दूसरों को ब्लेसिंग करेंगे, पहले हम खुद संतुष्ट होंगे तो अब हम दूसरों को संतुष्ट कर पाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट बताया है कि पहले हम ब्राह्मण परिवार में सामंजस्य बैठाएं और संतुष्टता लाएं, परिवार खुशहाल रहेगा, परिवार संतुष्ट रहेगा तो परिवार से हमें ब्लेसिंग मिलेगी, परिवार से ब्लेसिंग मिलेगी तो हमारा घर खुशहाल होगा और घर के जितने भी मेंबर होंगे वो क्या होंगे, बाहर जाएंगे तो वो भी हमें ब्लेसिंग ही देंगे, वो दूसरों को भी बांटेंगे तो वो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग कहाँ से आ रही है, स्टार्ट हमने किया ना तो वो स्टेप बाय स्टेप बाहर जा रहा है, वापस से हमारे पास वापस आ रहा है क्योंकि हम सर्च करते हैं कि ये हमें कहाँ से मिल रहा है। फिर थर्ड बताया है कि जब हम स्वयं से संतुष्ट होंगे, परिवार से संतुष्ट होंगे और समाज से संतुष्ट होंगे तो दूसरे भी हमसे संतुष्ट होंगे, और जब ऐसे संतुष्टता हम अपने जीवन में लाएंगे तो परमात्मा हमसे सदा ही संतुष्ट होगा और वाह बच्चे वाह के गीत गाएंगे। फिर बोला गया है कि हमें दुआएं क्यों चाहिए, किस लिए दुआ की जरूरत है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने हैं और बाबा के बच्चे बनते ही पहले हमारी लाइफ में विघ्न नहीं होता, लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो विघ्न बहुत आते हैं, एग्जाम बहुत आते हैं और उसमें क्या होता है कभी कभी हम घबरा जाते हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं, कभी कभी नहीं घबराते हैं तो पकड़ के मजबूती से बैठे रहते हैं, तो वहां भी हमें दुआओं की जरूरत होती है। दुआओं की जरूरत के लिए पहला बताया गया है कि जब कोई माया आती है तो हमें कैसे उससे सॉल्यूशन मिलता है, जब हमारे पास दुआओं का बैलेंस होता है तो हमें स्वतः ही सोल्यूशन मिल जाता है, बाबा की हेल्प होती है और मिल जाता है, फिर हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है और हमारा जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा डिग्री जिसके लिए हम लोग लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, डिग्री हमारी है फरिश्ता बनने की, तो जब हम निर्विघ्न रहेंगे दुआओं के खाते से, जो हमारी दुआएं हेल्प करेंगे, निर्विघ्न रहेंगे, तभी हमारे संपूर्णता और फरिश्तापन की जो डिग्री है वो हमें मिल पाएगी। तो इसलिए दुआओं का बैलेंस हमें बढ़ाना है, हर घड़ी चेक करना है, और दुआओं हमारे लिए क्या है, कवच है, कवच का काम करती है, ढाल का काम करती है, जब दवा का काम करती है, जहां पे सारी दवाएं बंद हो जाती है वहां पे ये दवा का काम करती है। और दुआएं जो है जब हम इतनी ब्लेसिंग कलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, जो कि सीढ़ी का काम करता है। बद दुआएं कोई देता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अपनी स्थिति को खराब नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसकी बद दुआ उसके पास ही रहती है। ये हमें पूरे दिन रियलाइज करना है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, होता है मतलब रोज रोज नया नया अगर एक्सपीरियंस हम उसको रियलाइज करेंगे तभी हम अपने विघ्नों को पार कर सकते हैं, क्योंकि विघ्न तो रोज आएंगे और उसमें मूंझ जाएंगे तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे, और हमें प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, क्योंकि हम इतने पीछे हैं अभी ज्ञान में, इतनी ज्यादा पीछे हैं कि हमें कॉम्पिटिशन भी वीट नहीं करनी, हमें सिर्फ स्नेह के विमान में बाबा के उड़ना है। तो उड़ेंगे कैसे, जब हम प्रॉब्लम से दूर होंगे, तो इसलिए हमें क्या क्यों में नहीं जाना है, उसको हम मनसा से सकास देंगे, योग करेंगे तो हम उसको स्पेशल सकास देंगे कि उसके जो बद्दुआ है, उसके जो निगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाएं, और हमें दिन भर उसके लिए पॉजिटिविटी थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। उसका बैलेंस हम नहीं चेक कर सकते ना, क्योंकि उसकी जो दुआएं बद्दुआएं वो उसकी होती हैं, बट हम उसको मनसा से सकास देके हम जो है उसका थॉट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे मतलब साइंटिस्ट ने भी कुछ वर्क किया हुआ है कि हम कैसे सामने वाले को चेंज कर सकते हैं। जब हम अपने आप को चेंज करेंगे तो सामने वाला क्या होगा, क्योंकि बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं कि वो रोज हमें परेशान करते हैं, रोज परेशान करते हैं, अगर हम उसे परेशान नहीं करेंगे एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन, तो वो भी क्या हो जाता है, वो थक जाता है, फिर बोलता है छोड़ो इसको दूसरा ढूंढते, क्योंकि उसका नेचर है ना, बाबा कहते हैं ऐसे लोगों को पकड़ के भी नहीं रखना है कि जो बात को पकड़ के रखे हठी हो, और उसके पीछे तो समय वेस्ट करना हो जाएगा ना, हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना। अब शांति, मेरा शरीर का नाम रेणु है, यूपी से।
ओम शांति, मैं मेरा शरीर का नाम बीके रूबी, मैं नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। मुझे ऐसे क्लासेस न सुनने को न करने को मौका मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ योग सिखाया जाता है और मुरली होती है। जो जो भी टॉपिक आज मुझे मिला है क्योंकि हम चर्चा नहीं करते हैं, इस तरह की क्लासेस नहीं करते हैं, वरिष्ठ भाई जी लोग आते हैं, बहन जी आती हैं, क्लास कराती हैं और चली जाती है, तो और चीट चैट करने का मौका हमें नहीं मिलता है बस, और नहीं कभी लिखने का मौका मिलता है। घरों में थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं, ना ही मैं पीस ऑफ माइंड देखती हूँ और ना ही मैं कोई मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि मोबाइल वगैरह से। तो जो भी मैं आज लिखी हूँ, जो भी बाबा ने मुझे ये वर्क दिया है, मैं अपने से लिखी हूँ, खास ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत। तो मैं अपनी कोशिश जो की हूँ वो सुनाती हूँ। स्नेह की शक्ति, यह वह सूक्ष्म चुंबकीय शक्ति है जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षण करती है, अपने पन की अनुभव कराती है, जहाँ मेहनत स्वतः समाप्त होकर अति सहजता अनुभव कराती है, हमारे हृदय में संपूर्णता, समर्पणता, विश्वास, निश्चिंतता जागृत होती जाती है। अति विकराल परिस्थितियों में को हम सहजता से पार करते हैं। स्नेह के द्वारा हम परे से परे रहने वाले निराकार शिव बाबा को अपने समीप साकार में अनुभव करते हैं। निराकार शिव बाबा भी इसी स्नेह की शक्ति के द्वारा हमें अपने जैसा साकार से निराकार बना देते हैं। हमारे कड़े संस्कार को परिवर्तन कर हमारे अंदर दिव्यता भरते हैं। बस मैं इतना ही कर पाई हूँ। मेरी 96 में जब मेरी शादी हुई तो मैं कुछ दिनों के बाद अपने युगल के साथ रास्ते से जा रही थी तो उस पार से मुझे बाबा की फोटो दिखाई दी। तो वहाँ पे ब्रह्मा बाबा की फोटो थी और उसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखी हुई थी। खास लाइटिंग नहीं थी, अंधेरी थी उस वक्त, फरवरी का यही 3 या 4 तारीख था। तो मैंने, वो मेरे से बातें कर रहे थे लेकिन मेरा ध्यान उस फोटो की तरफ था। बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और मैं कह रही हूँ आप मेरे पिता हो। तो मेरा लौकिक जो पिता है वो तो इस उम्र के नहीं है, वो ऐसे नहीं है, तो फिर आप मेरे पिता क्यों हो, कैसे हो। मैं उनसे बातें कर रही थी, मुझे उस वक्त किसी की भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। उस वक्त मैं, मेरे युगल की बात भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लग रहा था कि मैं सिर्फ बाबा से बात करूं उस वक्त। फिर मैं आगे निकल गई, फिर मैं मार्केट की तरफ गई, क्योंकि उसी दिन से मैं उनके साथ रहने लगी थी। उसके पहले मैं सास और ससुर के साथ थी। तो फिर जब मैं आ रही थी तो फिर मैंने बाबा के फोटो को देखा और मैंने बोला आप मेरे पिता हो तो मैं एक दिन आपके यहाँ जरूर आऊंगी, संकल्प किया। उसके बाद बस वो वहीं तक वो बात रह गई, मैं भूल गई। फिर मैं प्रेगनेंसी के दौरान मैंने बहुत सारे किताब पढ़े तो मैंने सोचा ये बाबा की ही किताबें हैं। तो जबकि थी वो गायत्री परिवार की, तो मैंने वो सारी किताबें बाबा की समझ के पढ़ी और उसमें जो जो लिखी थी प्रेगनेंसी के दौरान हम बच्चों को जो देना चाहते हैं वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैं परिवार में उलझ गई, जैसे कि बच्चों को जो परवरिश की जाती है उस तरह मैं ध्यान में लग गई। फिर 9 साल की जब बच्ची बड़ी हुई तो उस बच्ची के साथ मैं फिर उस स्थान पर आ गई जहाँ बाबा का मैंने फोटो देखा था। फिर बच्ची बहुत चंचल थी, उसकी ये विशेषता बनी कि युगल ने कहा कि चलो वहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, वहाँ उसको ले चलते हैं। तो हम अगस्त 2009 को वहाँ उस बच्ची को लेकर हम तीनों पहुँचे, बहन जी से मिले। बहन जी बोली कि इनको कोर्स कराना है, तो मैं बोली बहन जी क्या मैं कोर्स कर सकती हूँ, बोले हाँ आप भी करो। तो उस 9 साल की बच्ची के साथ मेरा कोर्स शुरू हुआ। बच्ची के साथ कोर्स बच्चों जैसा ही हुआ, बड़ों जैसा नहीं हुआ। यही 5-6 दिन का कोर्स हुआ, ना मुझे कल्प वृक्ष के बारे में मालूम था, बस थोड़ा बहुत। उसके बाद बाबा का सहजता का अनुभव हुआ, लेकिन अकेली थी, किसी भी ब्राह्मण परिवार का सहयोग मुझे नहीं मिला, ना कोई बुक्स मिले, ना कोई ज्ञान अमृत मिला, ज्ञान अमृत जो पत्रिका होती है, कुछ नहीं मिला। फिर भी चलते रहे हम, बीच बीच में जाते रहते थे उनके यहाँ, बाबा के यहाँ। फिर बीच में परिस्थितियों के वजह से छूट गई। फिर 2012 में युगल आपका टाटा मोटर्स में थे, ऐसी परिस्थिति आई कि नौकरी उनको छोड़नी पड़ी। फिर शीलू बहन का एक प्रोग्राम आया वहाँ पर, तो दीदी ने फोन करके बताया कि आप आओ, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर प्रोग्राम है। बस उसके बाद ही हम पूरा मुड़ गए बाबा के साथ, तीनों अच्छे से, मैंने युगल आ गए तो मुड़ गए, और उसके बाद युगल को हम धीरे 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 लाने लगे। तो युगल अभी मेरे से बहुत फास्ट जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा टच होता है और इतनी अच्छी टचिंग होती है उनको बात बात पर कि हम घर में सिर्फ 3 व्यक्ति ही हैं। अगल बगल हमारा बहुत शांत माहौल है, ज्यादा खास किसी से मैं लिंक नहीं रखती हूँ। बाबा का बनने के बाद लौकिक परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने और सब जो है कि ऐसे खाना खाते हैं कैसे इनका खाना खाएंगे, ऐसे बार बार आश्रम दौड़ते हैं तो कैसे इनके साथ चलेंगे, तो हम भी खुश है बाबा के साथ। और इतनी छोटी छोटी टचिंग होती है उनको और इतना खुश होता है, मैं कान लगा के रखती हूँ बाबा ने क्या बोला हर वक्त, मैंने बोला मैं बोलती आप पूछो बाबा से, तो मैं कान लगाती हूँ ऐसे करके कि मुझे भी कुछ सुनाई दे। बच्ची को भी बहुत अच्छा टचिंग होता है तो वो कहते हैं कि आप भी कोशिश करो ना कि बाबा का टचिंग आपको मिले। तो ऐसा तो नहीं है कि बाबा किसी भी बच्चे को असंतुष्ट रखते हैं, बाबा टचिंग कराते हैं। तो थोड़ा खेल पाल करती हूँ ऐसा करके, छोटी छोटी बात, जैसे कि बर्थडे होता है और पापा आते हैं बर्थडे मनाने, तो केक हम लोग काट के हमको खिलाते हैं और उनके लिए रख दिया जाता है। जब वो आते हैं शाम को तो मैं उनको देती हूँ केक, तो वो जब फिर बाबा को भोग लगाते बोलते आओ बाबा साथ खाते, तो बाबा बोलते हैं बच्चे केक तो मैंने खाया, आप खाओ। तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत खुशी देती है बाबा के साथ। शुक्रिया बोलने के लिए, हमें मुझे बोलने का ये मौका दिया गया। ये एक जो आपने कहा भाई जी कि अनुभव सुनाइए अपना कैसे बाबा मिले, ये जो बाबा मुझे रास्ते से दिखाई दिया, बाबा ने मुझे कहा बच्चा मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये आज तक बोलने का मौका नहीं मुझे मिला। मुझे यहाँ आके ये बाबा ने बोलने का मौका दिया और इस बात को मैं, बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो, तो इस अनुभव को मैं कभी नहीं भूलती हूँ, डेली याद करती हूँ कि मेरे पिता ने, मेरे शिव बाबा ने मुझे पहले अपना पिता के रूप में मेरा परिचय मेरे को दिया। हमें कोर्स कराने की भी मौका दी जाती है क्लास अपने सेंटर में, फिर और जो दूसरे जो छोटे छोटे और जो हमारे पीछे जो भाई बहने आते हैं उनके द्वारा भी हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पूछते रहते हैं बहन जी ऐसे कैसे करें, तो जितना मेरे पास है मैं उन्हें सहयोग देके आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। दूसरा एक और एक अनुभव मैं बताती हूँ आपको जो बहुत अच्छी है। 2013-12 से ही हमारा चल रहा है पार्ट, मतलब बिगरी का, जिसे बाबा कहते हैं बिगरी का पार्ट जो हम साक्षी होके बजा भी रहे। कैसी होती है मैं देख रही हूँ उसको, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, जबकि ऐसी परिस्थिति हमने पहले कभी नहीं अनुभव की। हर बात पे हम कहीं बाहर चले जाते थे, हर बात पे कुछ भी कर लेते थे, खरीद लेते थे। तो 2012 से हम ऐसी परिस्थितियों को झेल रहे हैं। तो मेरे पास 10 रुपया भी नहीं होता था कि मैं बाबा के भंडारे में डालूं। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बाबा की किताबों को लेके पढ़ूं, मैं बाबा के कैसेट्स को खरीद कर सुनूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ना ही हमने टीवी रखे थे घर में कि नहीं ये तो फालतू समय व्यस्त करने की चीज है, नहीं रखना है इनको, तो वो भी नहीं थी। तो एक कैसेट थी दो, जब बाबा की जो अमृत बेले की जो गाने शुरू होती है उसमें भूल गई हूँ नाम सीडी कैसेट का जो नंबर है, तो बस उसको सुनती थी। बहुत तड़प होती थी कि सेंटर्स में जैसे कैसेट चलते हैं जो कमेंट्री चलती है वो मैं भी सुनूं अपने घर में। तो बाबा फिर पीस ऑफ माइंड आया उस वक्त, घर घर चलने लगा, तो बहुत तड़प होती थी कि बाबा सूरज भाई जी का, शिवानी बहन का और सब वरिष्ठ भाइयों का इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही है, मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ। बहुत तड़पती थी घर में और बाबा से बातें करते रहती थी। फिर एक दिन 2013 में हमारा सेंटर बहुत बड़ा बन के शिफ्ट हुआ उसमें, तो दीदी ने कहा सफाई करो और सारा सामान अंदर करो। तो फिर सब कुछ तैयारी होने के बाद आखिरी दिन इतनी सारे कैसेट्स मेरे को बोला फेंक दो, तो वो सारी खराब है, सारी डिस्टर्ब थी। तो बोले, मैं बोले दीदी फेंक दूं, तो बोले अच्छा ऐसा करना ये कैसेट्स को ना आप चेक करना और चेक करने के बाद जो अच्छी होगी हमें पहुंचा देना और बाद बाकी फेंक देना। तो मैं बोली ठीक है। तो सारे कैसेट्स को मैं घर ले गई, बड़े प्यार से एक एक कैसेट को बहुत अच्छे से सुना, जिसमें बहुत सारी कैसेट्स हैं जो बहुत पुराने पुराने हैं, आपका आदि रत्नों की भी बातें उसमें है, बाबा की मुरली वगैरह है। तो सुन के जितनी अच्छी लगी, मैंने जितनी अच्छी थी वो क्वालिटी उसमें सारे मैंने दीदी को वापस कर दिए, और जितना मेरे को कहा कि तुम फेंक दो तो मैंने अपने पास रख ली, अभी भी है। और उन जितने भी डिस्टर्ब कैसेट थे उसमें से मैंने लिया और मैं आगे बढ़ रही हूँ, और दूसरे भाई बहनों को भी मैं उससे मदद करती हूँ। कहती हूँ डिस्टर्ब है लेकिन जो है वही तो हमारे लिए बहुत है। तो बहुत बड़ी कमी को मैं दूरी की बाबा ने मुझे मेरी लाइफ में। हम एक एक कैसेट को मैं बहुत बहुत बार सुनती हूँ और उसमें से कुछ कुछ अपने लिए अनुभव करती हूँ या एक प्रैक्टिस करती हूँ घर में। बस मेरी यही एक साधन है बाबा के करीब पहुँचते हैं उसके द्वारा, बाकी अपनी मेहनत बाबा से जो मैं स्नेह के द्वारा प्यार के द्वारा जो मेहनत बाबा करवाते हैं मेरे से, उसका हिस्से में चल रही हूँ। ओम शांति।